नमस्कार श्रोताओं, छिंदवाड़ा वालेन से आपका दोस्त योगेश। जिस तरीके से पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसी बीच में सरकार ने 18 प्लस के युवाओं को वैक्सीनेशन के लिए वर्तमान में तैयारी की जा रही, और आज हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता एवं यूथ हब सौसर के उपाध्यक्ष गोपाल जी कोठे जुड़े हुए। गोपाल जी, मोबाइल वाले पे स्वागत सर।
सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
सर, जिस तरीके से सरकार ने वर्तमान में 18 प्लस के युवाओं को वैक्सीनेशन लगाने की प्रक्रिया वर्तमान में चलने वाली है, इसको लेकर कई लोगों की मांग है कि वैक्सीन के लिए सेंटर बढ़ाया जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। किस जैसे देख रहे हैं सर इसको?
बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोगों का जो 18 से ऊपर 45 तक की जो युवाओं को जो वैक्सीनेशन लगना है, इसमें हमारे जिले की, हमारे नगर की और हमारे क्षेत्र की और पूरे देश में, अगर पूरे देश की बात करें तो हमारी जनसंख्या के लगभग 70% युवा लोग हैं, 60-70% युवा लोग हैं। और अभी बहुत सी तादाद में बहुत भीड़ बढ़ने वाली है और सरकार ने इसके लिए जो सेंटर जो है जो बनाया है, अभी जो हम हमारे परिसर की बात करते हैं तो हमारे परिसर में जो सेंटर बनाए गए हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, वो बहुत कम है। और वो अभी जो जो समय आने वाला है वैक्सीनेशन का, जो युवाओं को जो लगना शुरू होने वाला है, इसमें काफी बढ़ चढ़ के अभी से ही बहुत लोग उत्साहित है कि हम लोग जितने जल्दी हो सके वैक्सीन लगाए। इसलिए सरकार ने हर छोटे छोटे गाँव में और वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने चाहिए, 3-4 गाँव मिलकर एक पंचायत में या पंचायत लेवल पर भी अगर वैक्सीनेशन सेंटर अगर बढ़ाते हैं तो प्रशासन तो काफी बेहतर होगा और वहाँ की जो युवाओं को भी और वहाँ के जो लोग हैं उनको भी सुविधाजनक होगा मेरे विचार से।
जी सर। सर, वर्तमान में जिस तरीके से 18 प्लस के युवाओं को वैक्सीनेशन लगने वाली है, तो सेंटर पे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे इसके लिए प्रशासन द्वारा या स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जाए ताकि सेंटर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, नियमों का पालन हो सके?
जी बिल्कुल, देखिए बहुत से अभी जो स्वास्थ्य विभाग जिस प्रकार से अभी वैक्सीनेशन का हम लोग कार्यक्रम देखते देख रहे हैं कि जैसा चल रहा है, वो भी सराहनीय है, ज्यादा भीड़ नहीं लग रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। लेकिन जब 18 वर्ष के ऊपर के युवा है और 45 से ऊपर के नीचे के जब युवा है वहां पे जाएंगे तो युवाओं ने भी इस विषय का ध्यान रखना चाहिए कि सेंटर में हड़बड़ी ना करे, अपने बारी का इंतजार करे। प्रशासन भी कहाँ तक ध्यान देगा, प्रशासन तो व्यवस्था करवाएगा वहां की, जो भी सेंटर पे जो भी व्यवस्था होगी प्रशासन से करेगा, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी बनेगी, प्रशासन की तो बिल्कुल जिम्मेदारी बनेगी और ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनेगी कि हम लोग उस व्यवस्था को बिल्कुल बनाए रखे और उस व्यवस्था के अनुसार हम लोग वहां का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, 2 गज की दूरी और मास्क का उपयोग करते हुए हम लोग, हमारा यही मैसेज रहेगा। और जो वहां पे वैक्सीनेशन करने के लिए जो लोग जाने वाले हैं, जो भी लोग जाने वाले वो इस चीज का ध्यान रखेंगे और प्रशासन तो करेगा ही इसकी व्यवस्था। कुछ सामाजिक संगठनों का भी उपयोग लेना चाहिए प्रशासन ने, अगर उनके पास व्यवस्था के लिए अगर वॉलंटियर उनके पास कम होती है तो वहाँ के जो ग्राम पंचायत के लेवल पे अगर काम होता है तो वहाँ के लोगों ने वहाँ की व्यवस्था को करनी चाहिए।
जी सर, 18 प्लस के युवाओं को वैक्सीनेशन लगने वाली है, लेकिन कई ग्रामीण अंचलों में वैक्सीनेशन के पंजीयन को लेकर समस्या आ रही है कई युवाओं को, और ऐसे भी कई लोग हैं जिनका पंजीयन नहीं हो पाया है। साथ ही ग्रामीण अंचलों में वैक्सीनेशन को लेकर कई भ्रामक जानकारियां फैली है। सर, इसके लिए किस तरीके से देख रहे हैं कि इनकी भ्रामक जानकारियां भी दूर हो, साथ ही ग्रामीण अंचलों में वैक्सीन का पंजीयन हो और प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगे, इस तरीके से देख रहे हैं, क्या प्रयास किए जाने चाहिए इसको लेकर?
देखिए बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम लोग पिछले हम लोग 1 महीने का डाटा देखेंगे तो 45 के ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही थी और वो प्रशासन का प्रयास भी चल रहा था कि जितने लोग वैक्सीन लगाने आए उतना उनको टारगेट भी दिया गया था कि इस सेंटर पर आज इतने वैक्सीन होने चाहिए, लेकिन वहां पे कभी वो टारगेट पूरा नहीं कर पाए थे और ना अभी भी वो टारगेट पूरा कर पा रहे हैं। इसके पीछे जो भ्रामक स्थिति बनी है कि कोविड के कारण बहुत से लोगों की डेथ हो गई है और उन्होंने क्या हो गया कि बहुत से लोगों ने ऐसा है कि वैक्सीनेशन लिया है, उनकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई और उनको कोरोना होके उनकी डेथ हो गई है। लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं, ये नहीं है कि वैक्सीनेशन से उनमें इन्फेक्शन हुआ और कोरोना हुआ और डेथ हो गई। लोगों में ये भ्रामक स्थिति है, गांव गांव में अगर दूर दराज क्षेत्रों में हम लोग देखे, बहुत सारे वीडियो भी आए हम, और मैं स्वयं भी इस चीजों से, मैं बहुत से लोगों से, मेरे चित परिचित लोग है, उनकी भी मनस्थिति ऐसी थी कि हमारे गाँव में कोई वैक्सीन नहीं लगवा रहा है और स्थिति ऐसी कि वैक्सीन लगवाने से हमारे गांव में डेथ हो गई है और हम लोग नहीं लगाना चाहते। हम बाद में वैक्सीन का जो बोलना चाहिए कि जो पॉजिटिव वे में जो जाना चाहिए था वो वैक्सीन का नेगेटिव वे में आ गया है। तो इसलिए प्रशासन तो काफी प्रयास कर रही है, हर स्तर पे प्रयास हो रहा है कि वैक्सीनेशन का जो पॉजिटिव मैसेज है वो सबको जाए, वैक्सीनेशन के फायदे लोगों को समझ में। वैसे युवा पीढ़ी वैक्सीनेशन के फायदे समझ रही है और युवा में ऐसी चीज नहीं होगी, सभी जो युवा है, युवा इस वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेगा। और जो अभी आपने बताया कि ये जो समस्या आ रही है कि सोशल साइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है उसमें, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैंने भी खुद का किया था, तुरंत हो गया था रजिस्ट्रेशन, मेरा खुद का तुरंत हो गया था। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें घबराए नहीं, सब लोगों को वैक्सीन लगेगी, अपने बारी का इंतजार करना पड़ेगा और प्रशासन के साथ हमको काम करना पड़ेगा, यही मैं चाहता हूँ। जो भ्रामक स्थिति बनी है वैक्सीनेशन के लिए, इसके लिए और जागरूकता लानी पड़ेगी और प्रशासन को इसके लिए कि अलग अलग ग्रामों में, पंचायतों में सचिव सरपंच इनसे भी मिलकर उन्होंने काम करना चाहिए।
सर, वर्तमान में बीते दिनों आपने मोबाइल वाणी के माध्यम से आयुष्मान कार्ड निजी अस्पतालों में यूज हो इसको लेकर आपने मोबाइल वाणी के साथ यह मांग की थी, और वर्तमान में बीते कुछ दिनों पहले ही सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। सर, किस तरीके देख रहे हैं इसको?
हाँ बिल्कुल, अभी मंजूरी तो दी गई है प्रशासन के द्वारा, लेकिन ये देर आए दुरुस्त आए। हम चाहते थे कि आयुष्मान भारत का जो कार्ड था, ये तो पहली इस विषय में जो प्रचार प्रसार है और ये प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था, प्रशासन को भी टारगेट आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ने आयुष्मान भारत के जो कार्ड बने हैं उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए और स्वास्थ्य के लिए तो ये बहुत जरूरी है। अभी सरकार ने कहा है कि आयुष्मान के जो कार्ड जिनके बने हैं, हम लोगों ने भी काफी प्रयास किया था मोबाइल वाणी के थ्रू, सभी सदस्यों ने, और हर प्रकार से आयुष्मान भारत के लिए एक आवाज उठाई गई थी कि जो लागू हो और इसका सदुपयोग को और जनता को इसका फायदा मिले। और अभी सरकार ने इसके ऊपर डिसीजन लिया है और इसका फायदा शायद सब लोगों को मिले। मेरी भी यही अपेक्षा है कि इसका उपयोग सभी लोग करें और ये जो मैसेज है, आयुष्मान भारत का हर घर में कार्ड बनना चाहिए, हर लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए और प्रशासन ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।
जी सर, इसी से जुड़ा एक प्रश्न है मेरा वाला। आयुष्मान कार्ड के लिए जो अभी वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण जो व्यवस्थाएं हैं और सभी सेंटर बंद है, लेकिन क्या सर अभी इनका रजिस्ट्रेशन हो, आयुष्मान कार्ड बने, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए इस कोरोना काल में?
जी, आयुष्मान भारत का पहले मेरे विचार से कुछ सेंटर थे, शायद स्वास्थ्य विभाग करता था और एमपी ऑनलाइन के थ्रू आयुष्मान भारत का कार्ड बनता था।
जी
तो यही स्थिति की जो भी सेंटर है वहां पे आयुष्मान भारत का कार्ड जा ग्रामीण स्तर पे अपने ग्राम पंचायत में ओपन करे, अपने यहाँ के गांव में अगर हम लोग बात करते हैं तो गांव में ग्राम पंचायत स्तर पे वहां पे आयुष्मान भारत का कार्ड बनाना शुरू करे, पोर्टल चालू, अगर पोर्टल चालू है तो उसका आयुष्मान भारत का कार्ड लोगों तक जन जागृति के लिए इसका मैसेज सरपंच सचिव द्वारा अपने पंचायत लेवल पर, क्योंकि ग्रामीणों को बहुत जरूरत है आयुष्मान भारत कार्ड की, क्योंकि उनको स्वास्थ्य के संबंधित बहुत सी परेशानियां आती है और उसके बारे में उन लोगों को पता नहीं होता।
जी
तो प्रशासन ने पंचायत स्तर पर इसके सेंटर ओपन करने चाहिए, खुलने चाहिए और हर पंचायत में, हर घर में आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए।
जी सर, वर्तमान में करीबन 2.5 माह से जिले में कोरोना कर्फ्यू लगा गया है और राशन वितरण अभी हो रहा है और इसमें कई गड़बड़ियां देखी जा रही है। सर को इसको किस तरीके से देख रहे हैं ताकि गरीब लोगों को राशन उपलब्ध हो सके, क्या समस्या आ रही है और गरीब वर्ग के लोगों को जिस तरीके से राशन वितरण में जो गड़बड़ी आ रही है जिससे राशन नहीं मिल पा रहा है, किस तरीके देख रहे हैं?
ये तो बहुत अच शर्म की बात है कि जो राशन वितरण में बहुत सारी गड़बड़ी आ रही है। इसमें लोग अपने स्वार्थ के लिए जिन गरीबों को राशन मिलना चाहिए अभी बहुत जरूरत है, क्योंकि 1.5 महीने 2 महीने से सभी लोग घर पे अपने घर पे बैठे हैं, ना कोई काम धंधे से जा पा रहा, ना कोई कोरोना के कारण लॉकडाउन के कारण, ना कोई, गरीबों में बहुत ही हालत खराब है। एक तो प्रशासन ने तो 2-3 महीने का तो इनको फ्री अनाज देना चाहिए, साथ में बढ़ा के देना चाहिए। अभी हम लोगों के द्वारा भी बहुत से जगह अनाज वितरण जो हमसे जो प्रयास हुआ हम लोग हमारे संगठन के द्वारा किया गया, लेकिन हम लोग भी कितना सहयोग करेंगे, सामाजिक संगठन भी आके कितना सहयोग करेंगे, लेकिन इसके ऊपर प्रशासन की सख्त अगर ऐसी लापरवाही, जहाँ पे अनाज वितरण का काम हो रहा है और वहां पे गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है, और सख्त कार्रवाई प्रशासन द्वारा करनी चाहिए और अपने निगरानी में ये सब चीजें होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ बहुत से जगह पढ़ने में आ रहा है कि राशन के साथ बहुत कुछ छेड़खानी हो रही है, गरीबों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो मेरे विचार से इस पर प्रशासन ने सख्ती से काम करना चाहिए, और प्रशासन ने जहाँ गड़बड़ी होती है उनको बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए।
जी सर, बीते दिनों आपने मोबाइल वाणी पर सिविल अस्पताल में कोविड सेंटर को लेकर मांग की थी। वर्तमान में सर सिविल अस्पताल की क्या स्थिति है?
अभी सिविल अस्पताल की स्थिति हम लोगों ने, सभी संगठनों ने, सभी राजनीतिक दलों ने प्रयास किया था और वहां पे कोविड सेंटर खुले अपने सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में अभी स्थिति ऐसी है कि काफी बेहतर है पहले की अपेक्षा। वहां कोविड सेंटर वो खुल गया, और आज की मैं बात करूँ तो आज लगभग 12 से 14-15 पेशेंट वहां पे एडमिट है, और जितने भी पेशेंट थे रिलीव होकर अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच चुके हैं और कोविड को मात देते हुए वो अपने घर पे गए। अभी जो स्थिति है अभी 40-50 बेड खाली है, और हर बेड पे वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है और पाइपलाइन द्वारा वहां पे अच्छी व्यवस्था कर दी। मैं स्वयं जाके देख के आया हूँ, और वहाँ प्रशासन ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट काम करने के बावजूद वहां पे, लेकिन लेट हुए थे परिस्थिति के अनुसार, लेकिन अभी थोड़ा सा कोरोना के संबंध में स्थिति बेहतर है और हमारे अभी केसेस अभी कम निकल रहे हैं, और 2-3 कोविड सेंटर प्राइवेट भी ओपन हो चुके थे। तो अभी जो हम सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा व्यवस्थित काम है कोविड के सिस्टम में।
जी सर, इस कोरोना काल में यूथ ऑफ सौसर जिस तरीके से रक्तदान हो या फिर कई गरीब लोगों को अन्न पहुंचाना हो, सर यह प्रक्रिया जो की जा रही है इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर।
जी, हम लोगों का तो रक्तदान शिविर का तो एक बहुत बड़ा हम लोगों का एक प्रोजेक्ट ही है। हम रक्तदान के लिए पूरे तहसील सौसर, छिंदवाड़ा और नागपुर में इस 1.5 महीने में हम लोगों ने करीब करीब 30-35 यूनिट ब्लड जिसको भी ऑन द स्पॉट पहुंचाया है। करीब करीब 14-15 यूनिट ब्लड हमने नागपुर में भी अवेलेबल करवाया, प्लाज्मा अवेलेबल करवाया, जो भी हम लोगों से प्रयास बन पा रहा है हम लोग ब्लड के लिए करते ही है। साथ में हम लोग छिंदवाड़ा में भी जिनको जरूरत पड़ी थी उनको भी हम लोगों ने रक्त पहुंचाने की कोशिश की, प्लाज्मा पहुंचाया, और हम लोगों ने सौसर में निरंतर हम लोग हमारा प्रयास कि हम लोगों ने तय किया है कि हम हमारे सौसर हॉस्पिटल में रक्त की कमी ना हो। लेकिन हमारे साथ यूथ ऑफ सौसर के साथ अन्य लोग भी जुड़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाए कि आने वाले समय में रक्त की कमी ना हो। कल ही की दैनिक भास्कर पेपर में एक हेडलाइन आई थी कि जिला अस्पताल में रक्त की बहुत कमी जा रही है, रक्त यूनिट कम हो गया, कि जितने लोग हो प्रयास करें, पूरे जिले के लिए बहुत अच्छा मैसेज नहीं था। हम लोग हमारे सौसर में भी प्रयास करेंगे, अभी आने वाले समय में 2-4 दिन बाद हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले हैं। गुरुवार या शुक्रवार को हम लोग सौसर में एक और रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले, जिससे गरीब जो लोग हैं, गरीब माताएं बहनें गर्भवती महिलाएं वहां पे पहुंचती, उनको रक्त की बहुत कमी होती है और उनको रक्त की आवश्यकता होती है। तो हमारा काफी प्रयास रहता है कि हम लोग रक्त की पूरी सुविधा हमारे सौसर हॉस्पिटल को दें।
जी सर, यूथ ऑफ सौसर ने जिस तरीके से कोरोना काल में जो भी भूखा है उनको अन्न पहुंचाया है सर, तो अभी वर्तमान में यूथ ऑफ सौसर और नई वैक्सीनेशन को लेकर और राशन जो है आप गरीबों को पहुंचा रहे, क्या क्या अभी वर्तमान में क्या किया जा रहा है इसके लिए?
सर हमारा जो भी हम लोगों से प्रयास पड़ता है, अभी कोरोना काल में हम लोगों ने तीन चार एक हम लोगों ने आयुर्वेदिक काढ़ा जो अर्क जो बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी वितरित किया गया कोरोना काल में, जहाँ पे बहुत से फोन ऐसे आते कि भैया हमारे यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, चावल की व्यवस्था नहीं है, आटे की व्यवस्था नहीं है, तो हम संगठन के सदस्य द्वारा उन तक हम लोग कलेक्शन करके हमारे ही परिवार का जो भी घर पे जो भी अवेलेबल है हम लोगों ने उन तक पहुंचा दिया है। जिन लोगों के भी हम लोगों को कॉल आते थे हम लोग उनको तक सेवा कर रहे हैं। साथ में हम लोगों ने इस कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की, हमारे पास चार ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है, जे तीन अभी पेशेंट के पास हम लोगों ने दे चुके हैं, सेवा चल रही है,
जी
और जो भी हम लोगों से प्रयास बन पाता है हम लोग वो करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। हमारा युवा संसद संगठन जो है, हमारे सभी कार्यकर्ता इसके लिए बिल्कुल तन मन धन के साथ खड़े रहे।
जी तो ये थी गोपाल जी कुठे, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, वर्तमान में कोरोना संक्रमण जिले में किस तरीके से है, इसके बारे में मोबाइल वाणी पर जानकारी साझा की। गोपाल जी, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, मोबाइल वाणी के सभी सदस्यों को मन प्रणाम, जय हिंद जय भारत।
छिंदवाड़ा वालेन से आपका दोस्त योगेश।